प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, भाग तीन, लेक्चर नंबर 151। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तां, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करु धर्मकर्ता तीर्थश्री महावीरने वरिशेषतीर्थङ्करणे सिद्धशुद्धास्ति त्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने बंधुवळी ओ मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिये रीते गणगणने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाथ शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए है वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें से तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 पर हम आगे 71 नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से अपना भी शुरू हो जाएगा। ये इंद्रिय ज्ञान है ये क्यों है उसकी बात चल रही थी। 57 गाथा की टीका का प्रवचन अभी हम पढ़ रहे हैं। देखो, यद्यपि इंद्रियां तो तीन प्रकार की गिनने में आई है, 31 गाथा समय सार। जड़ इंद्रियों, ये जड़ यानी जो शरीर के अंग है, भावेंद्रियों जो एक एक क्षोभशम से एक विषय को जाने उसको भावेंद्रिय कहते हैं, क्षोभशम ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। यानी कौन सा क्षोभशम ज्ञान? इंद्रियों के द्वारा जानने वाला, आत्मा को जानने वाला भी क्षोभशम ज्ञान है, उसको नहीं यहां कहा, उसको इंद्रिया नहीं कहा। स्त्री कुटुंब परिवार देश भगवान और भगवान की वाणी सब इंद्रिय में गिनने में आया। इंद्रियों के द्वारा जो जो जानने में आता है उस सबको भी इंद्रिय कहने में आ गया प्रयोजनवश, क्योंकि उसको जो जितेंद्रिय किसको कहा, इनको जिन्होंने जीत लिया है इस अपेक्षा से। देखो अभी बताएंगे, 31 गाथा में ऐसा लिया है। देखो आचार्य अलग अलग अपेक्षाओं से कहां कुछ कहेंगे तो उसका क्यों प्रयोजन, ऐसा क्यों कहा वहां पर, वो बात बताएंगे। अभी 31 गाथा में ऐसा लिया है, जो इंद्रिय जिनित्ता इंद्रिय को जीते, अर्थात द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उसका विषय की ओर का लक्ष्य छोड़कर उसको इंद्रिय को जीता कहने। जड़ इंद्रियों को क्या जो जीतना है, वो तो अपने से जुदे है। तो कहते जड़ इंद्रियां भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषय, उनका अपना लक्ष्य हटाकर अपने आत्मा में जो केंद्रित करता है। तो नान सहावम, सहाव यानी स्वभाव, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा यानी ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है उसको पकड़कर जो वेदन हो यानी वो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसको पकड़कर उसी में एकाग्र होकर जो पर्याय उत्पन्न होती है अपना अनुभव होता है उसको वेदन कहा गया। जो वेदन हो उसका नाम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहने में आता है। कठिन बात है यह। आप कहेंगे वेदन अनुभव तो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्योंकि अनुभव पूर्वक प्रतीति हुई। हमने ऐसे श्रद्धा कि आप थोड़े झूठे बोलेंगे, भगवान थोड़े ही झूठ बोलने वाले, वो सत्य है, हम हाँ कहते हैं, वो हाँ नहीं चलेगी। तो अपने आत्मा के लक्ष्य से जो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ वो अनुभव पूर्वक हमने नक्की किया उसको प्रतीति कहते, उसी को श्रद्धा कहते। इसलिए यहाँ कहा जो वेदन होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कहने में आता है। कठिन बात है यह, है तो आसान क्योंकि सरल है, स्वाधीन है और किसी जात की पराधीनता नहीं है, परंतु आज तक जीवों ने इसको ना सुना है, ना उस पर विचार किया है, ना कभी उसकी कोशिश किया है। जो अपने हाथ की बात नहीं है, कौन सी परद्रव्यों को परिणाम में लिखे, उन पूरे रात दिन विकल्प तो उसी के चलते रहते हैं, विकल्पों से कुछ उसमें होता नहीं है। तो कहते इसलिए यहाँ कठिन कहा, है तो सरल किसके लिए, करने वाले के लिए। शुभराग तो धर्म नहीं, परंतु देखो शुभराग तो वो तो दुखरूप भाव है, बंध का भाव है, वो तो धर्म नहीं है, तो सब हम समझ सकते हैं। परंतु इंद्रिय ज्ञान भी धर्म नहीं है, एक तो परलक्ष्य से हो रहा है एक बात, और वहाँ साथ में राग भी है ही उसके। आत्मा अंदर आनंद प्रभु है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, सत चित और आनंद, उसका अर्थ क्या है ताराबेन? सत चित और आनंद का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद कुछ किसी का नाम होगा सच्चिदानंद, हाँ किसको कहा सच्चिदानंद, क्यों कहा सत, क्यों कहा? वो सत्ता स्वरूप वस्तु है, प्रत्यय द्रव्य सत है, केवल सत नहीं है, सत तो सारे छह द्रव्य सत स्वरूप है, परंतु चित और आनंद, चित कहने से चैतन्य, ज्ञान दर्शन दोनों आ गए, और आनंद ऐसा मेरा स्वरूप है। तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और कैसे अखंडानंद परमात्मा स्वरूप, अखंड है उसमें कोई भेद नहीं है, जिन स्वरूपी प्रभु, जैसे जिनेन्द्र भगवान ऐसे मैं स्वयं, उसके आश्रय से, उसका आश्रय लेना है, उसी के लक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न होगी, निश्चय से उसके आश्रय से जो ज्ञान होता है यानी जो जानना रूप पर्याय होती है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहने में आता है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा के द्वारा ही डायरेक्ट हमें आत्मा को जाना है, वहां कोई इंद्रियों का निमित्त, प्रकाश का निमित्त, अन्य कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमने इंद्रियों का, भाव इंद्रियों का, उसके विषयों का, सबका लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा का लक्ष्य किया है, ये कह रहे हैं। मत्स्यश्रुत ज्ञान भी अपने अनुभव में प्रत्यक्ष कहने में आता है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो मतिशुत ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, क्षोभम ज्ञान है, तो कहते जब इंद्रियों को जान रही है तब उसको परोक्ष कहा था, इसी क्योंकि आत्मा को जानना है, और जो अभी सर्वज्ञ नहीं हुए हैं उनके पास तो एक मतिशुत ज्ञान ही आत्मा को जानने के लिए। अवधि ज्ञान और मनपरि ज्ञान भी पर को विषय करने वाला है, रूपी को विषय करने वाला है। तो मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, तो कहते वह भी प्रत्यक्ष कहने में आता है। मतिश्रुत ज्ञान भी अपने अनुभव में प्रत्यक्ष कहने में आता है, क्योंकि उसको वेदन जो हुआ है वो प्रत्यक्ष हुआ, आत्मा के द्वारा आत्मा का वेदन हुआ है। मतिश्रुत ज्ञान जो है उसमें सम्यक दृष्टि को अंदर प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव होता है। यह ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष करता है, यानी वहां कोई इंद्रिया वगैरह उसका निमित्त है नहीं, ना राग है ना इंद्रिया है। इंद्रिय ज्ञान में 11 अंग पढ़ डाले की बात है ना, ऐसा लगता नहीं इतने शास्त्रों का अभ्यास, 11 अंग, अरे एक एक अंग क्या, एक एक पद कितना बड़ा है और ये 11 अंगों का अभ्यास किया है, परंतु वो कैसा हुआ, सारा परलक्ष्य ज्ञान हुआ, आत्मा को लक्ष्य में नहीं लिया है। तो कहते 11 अंग पढ़ डाले, अब जो श्लोको कंठस्थ करे, परंतु उसमें आत्मा के आश्रय से ज्ञान और आनंद नहीं है। हम भी कोई कंठस्थ करते हैं तो उसकी वाहवाह करते हैं, क्योंकि अन्यत्र यहाँ वहाँ भटकने के बदले, उपयोग लगाने के बदले उन्होंने शास्त्र कंठस्थ किए तो हम उसकी वाहवाह करते हैं, परंतु यहाँ क्या कह रहे कि उसके आश्रय से भी ज्ञान और आनंद नहीं है। हाँ वो करो, परंतु वहाँ तक संतुष्ट होने की बात नहीं है। बात उसमें जो बात बताई है इन आगम में, ग्रंथों में, श्लोकों में, वैसे अपने आत्मा का अनुभव करना है, तब वो कार्यकारी है, नहीं तो जाना नहीं जाना एक जैसा हो गया। ऐसा मार्ग कठिन लगे, लगे मार्ग यह है, प्रभु का मार्ग यह है, भगवान ने ही मार्ग बताया है। जिनेश्वर देव परमात्मा त्रिलोकनाथ ऐसा फरमाते हैं, दो पंक्ति में दो बात कह दी। आहा हा, स्वद्रव्य चिदानंद के अवलंबन से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि उसमें स्व का आश्रय है, आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव हुआ है, पर का आश्रय नहीं है। पर यानी इंद्रिया या अन्य वस्तु का वहां आश्रय नहीं है, और इंद्रिय के आश्रय से ज्ञान होता है, आश्रय से ने उसका निमित्त जहां बनता है, लक्ष्य बाहर की ओर है, वह पर के आश्रय से होता है, तो व्यवहार पराश्रित है, निश्चय स्व आश्रित है। लो यह नई बात आई, स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा है ना, आश्रित वो निश्चय, पराश्रित वो व्यवहार। जो आत्मा सीधा अंदर राग और मन के अवलंबन बिना, इंद्रिय के अवलंबन बिना, चैतन्य स्वरूप भगवान अंदर है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करे, तो वही निश्चय स्व आश्रय। क्या कहा? यही पूरी विधि बताई है आत्मा को जानने की, क्योंकि आत्मा तक ज्ञानमय है, तो वो स्वयं ज्ञानमय चीज है, पूरी दुनिया को, लोकालोक को जानने की जिसमें सामर्थ्य है, वो अपने को नहीं जान सके, ये कैसी बात हो सकती है, है? तो कहते जो आत्मा स्वयं ज्ञान है, वो आत्मा सीधा ही अपने को जाने, कैसे? शुभ राग से, तो अशुभ से नहीं, तो राग बिना, और कैसे? मन के अवलंबन बिना, यानी विकल्पों के बिना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, रटते रहो जोर जोर से, जोर जोर से, तो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो कहते उसके बिना, उसका भी लक्ष्य छोड़कर फिर होगा। राग और मन के अवलंबन बिना, इंद्रिय के अवलंबन बिना, हमने आंख तो बंद कर ली आत्मा को जानने के लिए, और अंदर देखने की कोशिश, देखने की कोशिश, क्या दिख रहा है? आत्मा दिखने वाला नहीं है। तो इंद्रिय के अवलंबन बिना, चैतन्य स्वरूप भगवान अंदर है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करें। जो है उसी का करना है, क्योंकि उसके लक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न होगी वो प्रत्यक्ष ज्ञान वाली, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद के साथ होगी। वही निश्चय स्वाश्रय, उसको स्वाश्रय कहा, और निश्चय ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहा, बाकी ज्ञान को ज्ञान ही नहीं गिना। क्यों? वो तो उससे कुछ अपना फायदा नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान है ही नहीं, ऐसा कहेंगे। श्रोता कहते इतना सब याद कैसे रहे, लौकिक की चीजें बहुत याद रहती हैं। समाधान, संसार का कितना याद रखता है, हीरा माणिक का कितना याद रखता है, इसका ये भाव है, उसका ये भाव है, इसका ये भाव है, घर में चीजें कितनी रखी है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, वो बराबर पट याद आती है। कौन सी चीज कैसे बनानी, कौन सी मिठाई, कौन सा क्या, हा? वो फटाफट, आज कौन सा पापड़ बनना है, कल कौन सा। हम कहाँ जाते थे, वो छिंदवाड़ा में, वहाँ पापड़ की 10-10 वैरायटी, एक इसका पापड़, एक तिल्ली का पापड़, इसका एक, उसका उसका, सुबह उठ नहीं, आज आज ताजा बनाए खाओ। अरे नाश्ता क्या, खाने में 25 चीजें तो नाश्ते की रखते हैं, भोजन तो पीसो ये, पर उसमें चूड़ा होगा, सेव होगा, इतनी वैरायटी पूरी, इतनी वो देख कर ऐसा लगे अभी भोजन ही नहीं चाहिएगा अपने को। तो वो सब याद रहे, और ये लगता है कठिन है, ये कह रहे संसार का कितना याद रखता है उसका ये भाव। इससे सेकंड लाइन हो गई, हमारे यहाँ दुकान में आनंद जी करके एक आदमी था, तो वह इतना याद रखता था, बहुत याद रखे, दुकान में हजारों प्रकार के माल होते थे, वह कब आया, कितना बिक गया, कितना बाकी है, नया कितना आया और नए भाव से कितना आया, वह सब याद रखे। देखो किसी का क्षोभ किस में चलता है, उसकी अपनी रुचि है तो उसमें सहज रूप से चलता है वो सब बात, यानी उसको रटना नहीं पड़ता, याद हो जाता है रुचि।
और नया माल जो आएगा वो अधिक भाव से आता है
तो अधिक भाव से बेचेगा,
तो
भी
पुराना माल भी नए भाव से ही बेचेगा।
अच्छा,
तो उसमें कितना फायदा होता वो भी याद,
वो भी याद है। आनंद जी था ना, आनंद
जी हमेशा भाव बदलते प्लाईवुड में,
आपने बंद कर दिया हमारे क्या
मर गया। हाँ, हजारों प्रकार का माल रहता था क्योंकि बड़ा व्यापार था ना, पाले से मुंबई का पास था, क्योंकि महीने में 4-5 बार माल लेने के लिए मुंबई जाना पड़े, बड़ा व्यापार पाले दुकान है ना, अभी भी दुकान है, मैं भी वहाँ दुकान पर बैठता था ना, तो मैं भी मुंबई माल लेने के लिए जाता था। श्रोता कहते आपकी कृपा से चलता गुरुदेव, वह तो पुण्य हो वैसे चलता है। हाँ हाँ, यहाँ तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, पुण्य के कारण मिले उसमें तो पराश्रय हुआ, और उसमें तो गदगदी हो जाती है ना, गलगदी क्या होता है, अच्छा अच्छा लगता है, खुशी खुशी होता है, तो पुण्य के कारण मिले उसमें पराश्रय, वो खुशी होती है, पुण्य से मिला ना तो पुण्य अच्छा है तभी तो मिला, यानी पुण्य का हिस्से हुआ, हमने किया तभी हुआ, हमने शुभ भाव किया तो पुण्य का बंध हुआ और अभी हम अच्छे उसका फल भोग रहे हैं, यानी वो बंध को अच्छा माना उसने, और कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, और यहाँ तो बंध तत्व संबंधी इतनी उसकी आसक्ति पड़ी है, यानी वो पाप का फल नहीं चाहता है, पाप करने में उसके कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, पाप करता रहता है, पाप का फल नहीं चाहिए उसको,
बीमार
नहीं पड़ना चाहिए, पैसे बराबर आने चाहिए, नरक में नहीं जाना है, देव में जाना है, यानी पुण्य के फल चाहिए, पन कर रहा है पाप, परंतु यहाँ तो पुण्य और पाप दोनों ही है यह कह रहे, क्योंकि पुण्य का फल भी होगा तो उसके फल में तो वो तो उसका लक्ष्य कर करके और नया पाप बांध रहा है, उसको तो परिग्रह ना, पुण्य के संयोग में क्या मिलेगा, परिग्रह, परिग्रह इटसेल्फ पाप है, यानी पुण्य के उदय में पाप कमा रहा है ये कह रहे गुरुदेव ने कितनी बार कहा,
यानी पापानुबंधी पुण्य,
हाँ ना, और वो भी पुण्य बांधा है उस रूप से उदय में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि बाद में कैसे परिणाम करे, तो वो पुण्य के परमाणु पाप रूप भी परिणमित हो जावे। यानी ये तो संसार के काम में और उसका हिसाब किताब नफा नुकसान सब बराबर हिसाब करे, यह तो बस देखा देखी, पुण्य को सबने अच्छा माना तो हम भी थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा हो पूरा नहीं, देखो पराश्रय, पराश्रय हुआ, पराश्रय है वह पराधीन है, गरीब है निर्धन है, अपने आत्मा के आश्रय से जो ज्ञानादि हुआ वह सधन है, वही हमारा धन है, सधन धनवान है, ऐसी बात है प्रभु, सूक्ष्म बात है, प्रवचन सार है, प्रवचन यानी वितराग की दिव्य ध्वनि, प्र यानी प्रकृष्ट उत्कृष्ट, परमात्मा विराजते है महाविधेय में विराजते है, वहां से यह वाणी है, इतनी दृढ़ता से कहते हैं, अरे हो गए शास्त्र में लिखा है तो महाविधेय होता होगा, वहां भगवान होते होंगे, किसने देखा, ऐसी नहीं बात है, साक्षात विराजमान है और वहां से ये वाणी आएगी, भगवान की साक्षात वाणी सुनकर आए थे तो मुनि, थे तो मुनि भावलिंगी संत थे, प्रचुर स्व संवेदन आनंद का वेदन था, तो जाने के बाद आनंद का वेदन हुआ ना, हाँ तारा बेन भगवान को देखकर, तो जाने के पहले मुनि थे ना भावलिंगी संत, तो जाने के पहले से ही थे, तो कहते उनके आत्मिक आनंद जो है अतीन्द्रिय आनंद प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का वेदन था। वे ऐसा कहते हैं कि जितना आत्मा के अवलंबन से ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष और सुखरूप है। सुखरूप यानी वो अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद वाला है, प्रत्यक्ष है सुखरूप है। इंद्रियाधीन जितना ज्ञान है वह सब दुख रूप और परोक्ष है। कोई कहे परोक्ष प्रमाण कहते हैं ना, क्या कहा परोक्ष प्रमाण किसको कहा, परोक्ष ज्ञान को भी प्रमाण कहा, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, और आगम तो है ही परोक्ष प्रमाण। लेकिन परोक्ष प्रमाण कब कहते हैं, कौन से ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा, तो जिसने मतिश्रुति ज्ञान में आत्मा का अनुभव किया है उसको वो उसका आगम का ज्ञान भी जो है वो परोक्ष प्रमाण कहेंगे उसको। निश्चय प्रकट हुआ तब व्यवहार को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। नहीं समझे, अब किसी ने आगम का अभ्यास किया है बराबर उसकी सही उसने पकड़ लिया है, अभी उसका अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। अब ऐसे जीव को निर्णय तक पहुंचकर उसका आत्मा का अनुभव हुआ, तो आत्मा का अनुभव होने के पहले आगम का ज्ञान था ना उसको, बाद में कोई आत्मा को देखकर कुछ अन्य एक्स्ट्रा ज्ञान हुआ नहीं आगम संबंधी उसको, अरे ये ज्ञान है ये असंख्यात प्रदेश है पहले नहीं जाना था अभी जाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पर। परंतु अभी वो जो आगम का ज्ञान है वो अनुभव होने के बाद उसको परोक्ष प्रमाण कहेंगे, पहले नहीं, पहले भी था ना, पर पहले कैसा था वो शब्द ज्ञान था, अभी कैसा है निश्चय प्रकट हुआ है, तो अभी उसका जो आगम का ज्ञान है उसको भी प्रमाण कहेंगे हम। देखो निश्चय प्रकट हुआ हो तब व्यवहार को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण शब्द ज्ञान में लगता है ना, नहीं तो आप कहेंगे वो निश्चय के पहले बाद में व्यवहार है, नहीं वो राग भाव है शुभ भाव है उसको परोक्ष प्रमाण नहीं कहा है, उसके ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहा है। जैसे निश्चय आत्मा का अनुभव दृष्टि हुई तो रागादि को व्यवहार कहने में आता है, वैसे ये तो दृष्टांत दिया आत्मा के अवलंबन से प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव हो तब व्यवहार इंद्रिय व्यवहार इंद्रिय प्रत्यक्ष है। क्या कहा, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहा उसको, इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो शास्त्र ज्ञान आदि जो उसके भगवान की वाणी सुननी वो इंद्रिय के द्वारा हो रहा है ना, पर वो तो वो प्रमाण में आ जाती, व्यवहार से उसको प्रमाण कहेंगे। ज्ञानी को भी इतना व्यवहार तो होता है, परद्रव्य के आश्रय से इंद्रिय के आश्रय से होता है पर सत्तावलंबी व्यवहार। हमने देखा ना जैसे निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र होता है वैसे व्यवहार समय दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। तो व्यवहार ज्ञान में क्या लेना है, ये तो आगम संबंधी ज्ञान को व्यवहार ज्ञान में लेना है, और ज्ञानी को भी है वो, परंतु उसको अभी हम प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे, उसको प्रमाण परोक्ष प्रमाण कहेंगे। यहां तो दो पंक्ति में ऐसा कह दिया, केवल यानी ओनली सिर्फ आत्मा के प्रति ही नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है, यानी जो ज्ञान अपने आत्मा का लक्ष्य करके प्रकट हुआ है वही उसी को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। वह ज्ञान वास्तव में सुखदायक है क्योंकि वो ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद युक्त ही होता है। ये सब वकीलों का ज्ञान और डॉक्टरों का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और वो कोई प्रमाण ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। और कैसा है वो, दुखरूप है। यह है श्रोता, वकीलों का ज्ञान और डॉक्टरों का ज्ञान तो लोगों के उपयोग में आता है, ये पूछने वाले राम जी वही होने चाहिए गुरुदेव श्री, क्योंकि लोग उसी को अच्छा मानते हैं ना, लौकिक में तो उसी की वाह वाह की जाती है, देखो कितना अच्छा है लोगों की सेवा करते हो, कितना धर्म कर रहे हो। मैंने जब छोड़ी ना प्रैक्टिस 86 में डिक्लेयर किया था कि 1 अगस्त 92 को हम रिटायर होंगे, दवाखाना भी बंद हो जाएगा। 6 साल पहले डिक्लेयर कर दिया, अभी से आप दूसरा डॉक्टर देख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, निवृत्ति क्यों लेंगे, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा धर्म है, ऐसा है वैसा है, पूरा मेरे को उपदेश दे दे। तो यही पूछते, उपयोग में आता है ना,
यानी आपको भी सिखाने वाले मिले,
बहुत मिले ना। गुरुदेव श्री धूल में भी लोगों, अरे सेवा है, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, धर्म हमने काहे का धर्म है, पैसे लेकर आपको दवा बता रहे हैं, उसमें क्या धर्म कर रहे हैं। धूल में भी लोगों के उपयोग में नहीं आता, आता नहीं, अभिमान में जाता है कि मुझे ज्ञान है और मैं सबको जीता सकता हूँ। अच्छा, वो वकील लिखने वाला जीता सकता हूँ और डॉक्टर के मैं जिला सकता हूँ और ये जिता सकता हूँ। जीता वो वकील को जिता सकता हूँ, जीत वो जीत कर दे, और डॉक्टर के मैं उसको जिला सकता हूँ, मैं उसको जिंदा रख सकता हूँ। यहाँ तो परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ की वाणी दिव्य ध्वनि में आया, और ये कोई संत अपनी ओर से नहीं कह रहे, भगवान ने जो बताया है वो अनुभव पूर्वक बता रहे। प्रवचन है ना, प्र अधिक वचन, प्र अर्थात विशेष रूप से, दिव्य ध्वनि का वचन। भगवान ऐसा कहते हैं, प्रभु तुझे जो 5 इंद्रिय से ज्ञान होता है वह तो परद्रव्य है, वो ज्ञान को भी परद्रव्य कह दिया है ना। परद्रव्य के निमित्त से और आधीन होकर, परद्रव्य क्यों कहा, देखो अपेक्षा है ना यहाँ पर, ज्ञान तो अपनी पर्याय है, उसको परद्रव्य कहने का प्रयोजन क्या था। तो परद्रव्य के निमित्त से, क्योंकि इंद्रिया परद्रव्य है, शरीर का अंग है, और परद्रव्य ने लक्ष्य किसका किया, और अन्य परिद्रव्यों का, इंद्रियों के विषयों का लक्ष्य किया। तो परद्रव्यों के निमित्त से और आधीन होकर हो, वह ज्ञान तो परोक्ष, वह ज्ञान तो परोक्ष है, और वह परद्रव्य के अधीन होता है, वह तो दुख रूप है। 2 पंक्ति आई। अब आगे कहते हैं, और आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करते। कौन? वो इंद्रिया। क्या कहते हैं कि इंद्रिय का ज्ञान जो है वह परद्रव्य इंद्रिय के निमित्त से होता है, वह आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करते। आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। क्या कहते हैं? इंद्रिय का ज्ञान सुनने में आया, देखने में आया, सूंघने से आया। अलग अलग इंद्रियों के अपेक्षा से बात करें, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा देखा, सुना, सूंघा, स्पर्श से आया, वह ज्ञान परद्रव्य के अधीन है, इसलिए वह ज्ञान आत्मा को किंचित स्पर्श करता नहीं है। वो परद्रव्य के लक्ष्य से हुआ ज्ञान है, परद्रव्य संबंधी ज्ञान है, वो आत्मा को स्पर्शने वाला ज्ञान नहीं है। है इंद्रिया आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती, यानी आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। यानी जो इंद्रिय ज्ञान है वह आत्म स्वभाव रूप किंचित भी नहीं है। चाहे तो 11 अंग पढ़ डाले, इंद्रिय से करोड़ों श्लोकों अब्जों श्लोकों का ज्ञान करे, किंतु उसमें आत्मा का किंचित स्पर्श नहीं। और जीव को तो ये क्षोभसम ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से जितना जाना है उसका ही अभिमान हो रहा है उसके, तो मैं बहुत ज्ञानी हुआ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, यानी वो तो उसी का मद हो जाता है उसको, अज्ञानी को। प्रभु का मार्ग ऐसा है, ऐसा है। आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है, इंद्रिय से ज्ञान हुआ उसमें आत्मा का स्वभाव का अंश नहीं, वह तो सब जड़ का अंश है। आहा, शब्द ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। हाँ हाँ, भगवान चैतन्य मूर्ति के आश्रय से, निश्चय से अंदर जो ज्ञान होता है तो वह आत्म स्वभाव को स्पर्श करके हुआ, उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। क्योंकि आत्मा के लक्ष्य से हुआ है, आत्मा के द्वारा डायरेक्ट आत्मा को जाना है, तो कहते वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुखरूप ज्ञान है, शांति रूप ज्ञान कहने में आता है। भारी कठिन पड़े, एक और व्यापार धंधे से, पाप से फुर्सत मिले नहीं, उसमें ऐसा सुनने मिले तो क्या पकड़े। क्योंकि सुनने बैठा है तो बिल्कुल दिमाग खाली होता होगा सुनने के प्रति, के व्यापार धंधे के भी विचार आते हैं, क्यों उतारा बे? आजकल विचार आने की भी जरूरत नहीं, भाई कोई दूसरा विचार कराने को जबरदस्ती करता है ना फोन करके आपको। वो भी घंटे भर कहाँ शांति मिलती है, आश्रव का द्वार खुला रखते। वो उस जमाने में आश्रव थोड़े थे, आजकल का ये आश्रव बढ़ गया है, मोबाइल नाम का आश्रव। श्रोता, रुपए कमाकर धर्म में खर्च करें, क्या कहा? इसको कहते पहले कीचड़ में जाके कीचड़ लगा के आओ फिर धोने बैठो, ऐसा शास्त्र में आया। हाँ, रुपए कमाकर धर्म में खर्च करे, यानी उसको ऐसा ऊपर से बताना चाहते हैं, नहीं नहीं हम इसके लिए कमा रहे, किसके लिए? दान करेंगे, मंदिर बांधेंगे, इतना खर्चा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। गुरुदेव श्री कहते धूल में धर्म में खर्च करे, वो धर्म है कहाँ जहाँ वो खर्च करना चाहता है? हाँ, वो जो नहीं दिखाया था गवर्नमेंट को वो खर्चा करता है। वो कहते 5-10% ही खर्चा करता है जो कमाता है उसमें से। मैंने बोला कि वो भी नहीं, जो दिखाया नहीं गवर्नमेंट को वो खर्चा करता है। रुपए कमाकर धर्म में खर्च करे, धूल में धर्म में खर्च करे, राग मंद करे तो पुण्य है, और वो पैसे मैंने दिए, मेरे पैसे ऐसा माने तो मिथ्यात्व है। और उसे समाज में बड़ा अपने को दिखाना चाहते हैं औरों को।
आपने पैसे दिए ना, दूसरे आपने पैसे दिए ना, अरे अभी तो इतना परसेंट है।
पैसा तो जड़ है, पर द्रव्य है, वह आत्मा का द्रव्य है। तो परद्रव्य मैंने दिया, परद्रव्य मेरा है और मैंने दिया ऐसा मानता है तो वह परद्रव्य का स्वामी हुआ, मिथ्यात्व हुआ। रुपए का उसके बाप के थे। दो हजार साल में अफ्रीका में कभी दिगंबर मंदिर नहीं हुआ होगा। ज्येष्ठ सुदी ग्यारस के दिन खात मुहूर्त किया अफ्रीका में नैरोबी, उसके खात मुहूर्त में लाखों रुपए दे तो भी उसमें राग मंद किया हो, इतना पुण्य है, धर्म नहीं। अरे अरे ऐसी बातें, यहाँ 100-200 रुपए दे तो तख्ती लगावे, यानी अपने नाम का तख्ती वो पटिया लगावे। अरे भाई प्रभु, तू परमात्मा स्वरूप है और जिन स्वरूप ही है, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान सो मत वाला समझैन। घट घट अंतर जिन है, भगवान वीतरागी स्वरूपी ही है अंदर, घट घटे ने हर एक शरीर में जो जीव है तो हर जगह है, भले अभी वो मिथ्यात्व में पड़ा है तो जिन स्वरूप, उसका स्वभाव ही वीतराग अकषाय स्वरूप है। जैसे हम कहें सर्वज्ञ स्वरूपी है, और ये हम देखते हैं सर्वज्ञ वितराग हुए बिना सर्वज्ञ नहीं, तो जो सर्वज्ञ स्वरूपी है वो वितराग स्वरूपी होना ही होना है। अंदर वितराग चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा है की बात है, होगा की बात नहीं, के है कभी है त्रिकाल, प्रत्येक समय में वो परिपूर्ण वितराग, परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी है। राग से भिन्न है, इंद्रिय के ज्ञान से भिन्न है, ऐसे आत्मा का ज्ञान करना ज्ञायक भाव में अनादि अनंत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव में लक्ष्य करके उसमें एकाग्र होना। आप कहेंगे अनादि अनंत हम कैसे जानेंगे? अरे वर्तमान में वो अनादि अनंत ध्रुव पड़ा है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं एक समय में त्रिकाली है, अनादि से लेकर अनंत काल का मिलके वो अनादि अनंत नहीं है, वो मिलकर त्रिकाली नहीं कहा उसका। ये जो ध्रुव हर समय में उतना का उतना परिपूर्ण है, तीन काल का मिलकर परिपूर्ण नहीं हुआ है वो, नहीं समझे? द्रव्य कब से कब तक है? अनादि से अनादि, तो अनादि से लेकर अनंत काल तक है, तो इसलिए वो उतना शक्तिशाली है क्या कि उतनी शक्ति हर समय में मौजूद है उसकी? हर समय में गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार है कि प्रत्येक समय वो त्रिकाली, वो त्रिकाली पूरा हमारे अनादि अनंत पर्यायों को देखने की जरूरत नहीं है। वो जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो त्रिकाल रहने वाली है, वो परिपूर्ण सामर्थ्य एक वर्तमान समय में है परिपूर्ण। कभी भी देखो आप, एक समय में वो जो एक समय में परिपूर्ण सामर्थ्य है वो त्रिकाल टिकने वाला है, इसलिए उसको त्रिकाली भी कहेंगे। ख्याल में आएगा? जैसा का वैसा है वो त्रिकाल, वैसा का वैसा रहने वाला है, पर वो त्रिकाल में रहता है इसलिए वो परिपूर्ण, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में वो परिपूर्ण है। वो पर्याय के पीछे तो पूरा, क्योंकि अभी पर्याय भले अधूरी है परंतु स्वभाव सामर्थ्य जिसको कहेंगे वो तो परिपूर्ण है वहां पर। है ना? ज्ञायक भाव में अनादि अनंत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव में लक्ष्य करके उसमें एकाग्र होना। पहले लक्ष्य कहा? इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थों का लक्ष्य था अनादि से, अभी वहां से अपना लक्ष्य हटाकर अपने स्वरूप में लीन होना। खाली इंद्रिय नहीं, मन के विकल्पों से भी लक्ष्य हटाना है। बस वही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, बाकी सब बातें हैं। यानी वो केवल शब्दों में या चर्चा में रुकना नहीं है, विकल्पों तक रुक के कुछ फायदा नहीं है। ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसके लक्ष्य से ही एकाग्र होकर वो ज्ञान उत्पन्न होगा, वही अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। यानी ये तो शब्दों के द्वारा तो वस्तु को बताया जाता है, उसका इशारा किया जाता है, जो करना है तो हमारे ज्ञान स्वभाव में ही एकाग्र हो जाना है, और स्वभाव ही उसका साधन है, और कोई अन्य साधन नहीं कि शुभ भाव करो फिर बाद में उसका लक्ष्य होगा, थोड़ी मदद होगी, हेल्प होगा, थोड़ी आत्मा के नजदीक पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल है। यहां कहते हैं आत्म स्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती। कौन? इंद्रिया और इंद्रिय ज्ञान भी है ना। आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। कौन? इंद्रिय ज्ञान। ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके, उपलब्धि करके नहीं जानकर, उपलब्धि होना है नहीं, जानने में आना, अर्थात यह जड़ और पर भावेंद्रिय आदि द्वारा उपलब्ध करके, ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर, उपलब्धि करके ने पदार्थों को जानकर उत्पन्न होता है। कौन? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान कैसे है? ऐसी जो इंद्रिया बताई उसका पहले वो वर्णन किया है कि वो परद्रव्य स्वरूप है, आत्म स्वभावत को स्पर्श नहीं करती है। ऐसे इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, ऐसा जो इंद्रिय ज्ञान है वह आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पांचों इंद्रियों की ओर से जो ज्ञान होता है उसमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी बात है। भावार्थ, जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये सादी शब्दों में बता दिया। सीधा आत्मा को जाने, मन और राग की अपेक्षा नहीं। रागे ने शुभ राग करो तो प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। मन को क्यों डाला? कि मन के द्वारा विकल्पों में रुका है परंतु उसके द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा नहीं। इंद्रिय ज्ञान हुआ तो हम अंदर में जा सकते हैं, ऐसी जिसको अपेक्षा नहीं है। आप कहेंगे देशना के लिए तो इंद्रिय ज्ञान आवश्यक है ना, देशना लब्धि तभी कहेंगे, ज्ञानी की हमने वो देशना सुनी तो वो इंद्रिय ज्ञान से हुई कि नहीं हुई? तो देशना मिली इसीलिए तो आत्मा का अनुभव हुआ ना, उसके ये ऐसी अपेक्षा नहीं कहते। हाँ, ये कल बात आई थी ना, किसमें बेंश्री के उसमें आई थी क्या, इसी में आई थी, देशना लब्धि की बात आई थी ना कल बेंश्री बहन के उसमें। हाँ, शास्त्र से सुनकर ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की भी अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान में अपेक्षा नहीं है, यही बात है। शास्त्र से सुनकर ज्ञान हुआ यानी वो देशना मिली, उसके कारण अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ ऐसा भी नहीं है, है? वह ज्ञान प्रत्यक्ष यानी सीधा आत्मा के द्वारा होता है, इंद्रिय ज्ञान से भी नहीं होता। कुछ इंद्रिय ज्ञान हुआ तो लक्ष्य हुआ कि नहीं, तो कहते इससे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। तो हमने इतना सारा इंद्रिय ज्ञान किया, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, सब छोड़ दे, वो छोड़ दे किसके लिए, आत्मा का लक्ष्य करने के छोड़ दे तो अच्छा है, नहीं समझे, वो छोड़ दे और दूसरा पूरी दुनियादारी करते बैठे तो क्या फायदा है उससे, छोड़ना तो है किस अपेक्षा से। हाँ, क्योंकि उसमें जो बताया था मार्ग बताया था, तो ये मार्ग कैसे होगा, तो डायरेक्ट आत्मा के द्वारा आत्मा को जानते हैं तब वो मार्ग प्रकट होगा, पर शास्त्र पढ़ा है इसलिए वो होगा ऐसी बात नहीं है। सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इंद्रिय ज्ञान तो परद्रव्य स्वरूप ये जड़ इंद्रियों द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है। एक गाथा में कितना भर दिया है, यानी कितना माल भर दिया है उसमें। स्वद्रव्य के आश्रय से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान है, परद्रव्य के आश्रय से ज्ञान होता है वह व्यवहार है, और व्यवहार हेय है, व्यवहार पराश्रित है और पराश्रित हेय है। स्वद्रव्य आश्रय उपादेय है, आहा हा, अंदर भगवान आत्मा के अंतर में से स्व के आश्रय से जो ज्ञान होता है वह निश्चय ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुखरूप ज्ञान है, और इंद्रिय द्वारा परद्रव्य द्वारा परद्रव्य के अवलंबन से होता है वह इंद्रिय ज्ञान है, दुखरूप है, परोक्ष है। अपने आत्मा का इंद्रिय ज्ञान में किंचित स्पर्श नहीं, यानी इंद्रिय ज्ञान होता है वो आत्मा को स्पर्श नहीं करता, ऐसा स्वरूप है। तो क्या करना, ऐसा कहते हैं अंदर जैसे नाचार्य देव की टीका में लिया है, सकल एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय परम ज्योति कारण भूते स्वशुद्धात्म स्वरूप भावना समुत्पन्न परम आह्लाद एक लक्षण सुख संवित्ति आकार परिणति रूपे रागादि विकल्प उपाधि रहिते स्वसंवेदन ज्ञाने भावना कर्तव्या इति अभिप्राय। कल हमने इसका हिंदी देखा था, अभी गुरुदेव क्या कहते देखेंगे, संस्कृत है। अपना आत्मा सकल एक अखंड आत्मा है, अखंड एक अखंड, उसमें कोई भेद टुकड़े खंड खंड कुछ नहीं है। समय सार की 320 गाथा में अखंड एक आता है, त्रिकाल सकल निरावरण प्रभु अंदर है, अखंड है और एक है, यहाँ एक और अखंड लिया। सर्वकाल एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, वो प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में आ जावे, ज्ञानमय प्रतिभासमय, वो आता ना स्वसंवेदनमय, वहां भी ऐसे लिया है कि भगवान तो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है। मति और श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, मति श्रुत को जो परोक्ष कहा है वो पर को जानने की अपेक्षा परोक्ष कहा है, वो इंद्रिय ज्ञान में होता है, इसलिए आत्मा को जानने में वो प्रत्यक्ष है। शास्त्र में तत्वार सूत्र में मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है, वह तो पर की अपेक्षा से कहा है, परंतु हाँ इंद्रिय ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान के द्वारा, वो मति ज्ञान से इंद्रिय ज्ञान होता है, और मति ज्ञान से जो पदार्थ हमने जाने हैं, हमने कोई शब्द सुना, हमने सुना शक्कर, हमने तो शब्द सुना है, उसके द्वारा वो शक्कर पदार्थ को हमने जान लिया है, वो शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। हाँ उसको, हाँ परंतु उसको इंद्रिय को अलग से छोड़ के केवल विकल्प वाली बात नहीं लेना यहाँ पर, यानी तत्वार सूत्र में मति श्रुत को परोक्ष कहा, वो तो पर के जानने की अपेक्षा लेना, परंतु अपना ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष ज्ञान बिना सम्यक ज्ञान कहने में आता नहीं। क्या कहा, भले वो अल्प ज्ञान है, मतिशुद्ध ज्ञान शोभम ज्ञान है, परंतु आत्मा को जानने में वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि सीधा आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना है, वहाँ कोई इंद्रियों का मन का कोई अवलंबन नहीं है, यानी मन के द्वारा आत्मा को ख्याल में लिया ऐसा नहीं है वहाँ पर। 11 अंग पढ़ डाले तो भी मिथ्या है, किसके आत्मा के अनुभव बिना की बात, वो इन्फॉर्मेशन ली उसने बस इतना ही, तब तक उसको वो हम प्रत्यक्ष भी नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञान भी नहीं कहेंगे। अभी हम 76 पृष्ठ पर आते हैं। अथ परोक्ष प्रत्यक्ष लक्षणम उपलक्ष्य थी। अब परोक्ष और प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है उसकी अभी यहाँ चर्चा करेंगे, उसका उपलक्षण बताएंगे, उसका लक्षण बताएंगे। पहले गाथा पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जम परदो विन्नाणम तंतु परोक्षं तिबणिदमट्ठेषु यदि केवलेन नादम अवदिहि जीवेन परचक्कम यत् परतो विज्ञानम तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु यदि केवलेन ज्ञातम् भवति जीवेन प्रत्यक्षम् अर्थोतनु ये ज्ञान परतः थायते ह परोक्षचे जीव मात्र थी च जनाय ज्योतो ज्ञान ते प्रत्यक्षचे। यहाँ संस्कृत श्लोक में पहली लाइन का लास्ट शब्द है ना, भणित तो चाहिए, मणित नहीं, मैंने ठीक करके पढ़ा था, जैसे ऊपर भणितम अर्थेषु है ना, वैसे भणितम अर्थेषु, वो भणित तो होना चाहिए, मणित तो नहीं। संस्कृत का सेकंड पहली लाइन का लास्ट क्या हुआ, पहले गाथा का वहां से पढ़ो। क्या वो उसमें कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा है क्या? एक्चुअली हाँ आपके उसमें वो छापा होगा ना, तो वैसे 76 पेज पर जो पैराग्राफ है और 77 पर भी जो पैराग्राफ है वो 58 गाथा के पहले उसमें शायद छपा होगा, वो पहले पढ़कर फिर 58 गाथा पढ़नी चाहिए, है ना, यही कह रहे, नहीं समझे वो पहले हमने यहीं पर रुका ना, हमें परंतु वो 58 गाथा के पहले वो बोला है। वो पढ़कर फिर हम अन्वयार देखेंगे। देखो अहा परम ज्योति कारण भूते, परम ज्योति प्रभु मिला ना, परम ज्योति प्रभु आत्मा वह जिस ज्ञान में कारण रूप हो उसका नाम परम ज्योति कारण भूते, ऐसा जो लिखा है ना, शुद्धात्म स्वरूप भावना समुत्पन्न परम आह्लादे, परम आह्लादयिक ऐसा आगे बढ़ाए, वो शॉर्ट में उतना ही लिखा। देखा आत्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें परम आह्लाद आता है, परम आह्लाद यानी अतीन्द्रिय आनंद। जैसे नाचार्य की टीका में संस्कृत में है, अपना जो सम्यक ज्ञान हो वह परम आह्लाद रूप होता है, परम आह्लाद एक लक्षण सुख संवित्ति आकार परिणति रूपे रागादि विकल्प उपाधि रहिते स्वसंवेदन ज्ञाने भावना कर्तव्य। यह सुनकर अंदर स्वसंवेदन ज्ञान की भावना करना, क्या करना, तो ये करना, भावना करने में इच्छा करते रहना, वो बात नहीं, उसमें एकाग्र हो जाना। भारी काम, संसार के पाप आड़े अभी सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, उसे कहते अंदर आत्मा में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कर, परोक्ष ज्ञान भी छोड़ दे, इंद्रिय का ज्ञान भी छोड़ दे और स्व प्रत्यक्ष है उसकी भावना कर। जो है कहीं लाना नहीं है और केवल वो उसका इमेजिन नहीं है, यानी कोई कल्पना नहीं है, वो तो है वहां पर। यह बात है भाई, सत्य तो यह है। अभी हमने जो लिखा था ना, गाथा पढ़ी थी, उसके ऊपर की लाइन भी पढ़ी थी। अब परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बतलाते हैं। गाथा हमने पढ़ ली है, ओरिजिनल प्राकृत संस्कृत और उसका गुजराती हरिगीत, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। 77 पृष्ठ पर परतः, यानी पर के द्वारा, एक है स्वतः और परतः, इसे दो शब्द आते हैं, स्व से या पर से। परतः कहे पर से, यानी पर द्वारा थतु यत जे अर्थेषु विज्ञानम, पदार्थों संबंधी विज्ञान, विज्ञान यानी ज्ञान, तत्तु ते तो परोक्षमिति भणितम, परोक्ष कहवामां आव्युं छे। क्या कहा, पर के द्वारा होने वाला पदार्थों संबंधी ज्ञान है उसको परोक्ष कहते हैं। पर द्वारा यानी वो इंद्रियों द्वारा, वो पर द्वारा हुआ, क्योंकि इंद्रिया पर पदार्थ है, आत्मा नहीं है, वो शरीर के अंग है, वो जड़ है। जो यदि यानी जो केवल न जीवे न, केवल जीव वड़ेज, सिर्फ ओनली जीव द्वारा ज्ञातम भवती ही, जानवामा आवे प्रत्यक्षम, तो ते ज्ञान प्रत्यक्ष छे। जहाँ वो इंद्रिया आदि का किसी का निमित्त नहीं, ना मन का, ना इंद्रिय का, ना अन्य किसी का, बस जीव के द्वारा ही वो डायरेक्ट ज्ञान हुआ है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। टीका, ये अमृत चंद्राचार्य की टीका है। यहाँ पर निमित्त पणाने पामेला, अर्थात निमित्त रूप बनेला, एवं जे परद्रव्य भूत अंतकरण, अंतकरण ने मन, वो भी करण है ना, अंत का इंद्रिय है मन, इंद्रिय परोपदेश उपलब्धि, उपलब्धियां ने वो जानने में आ गई ना बातें, संस्कार के प्रकाश आदि का। संस्कार किसको कहा, निमित्त, हाँ निमित्त पने पामेला, यानी इनके निमित्त से जो हो रहा है, तेमना द्वारा थतु जे स्व विषयभूत पदार्थनु ज्ञान, ते पर द्वारा प्रादुर्भाव पामतो हुवाथी परोक्ष तरीके ओळखाय छे, अने अंतकरण इंद्रिय परोपदेश उपलब्धि संस्कार के प्रकाशादिक, ए बधाय परद्रव्यनी अपेक्षा राख्या विना एक आत्म स्वभाव ने ज कारणपणे ग्रहीने सर्व परद्रव्य पर्यायोना समूहमा एकी वक्ते ज व्यापीने प्रवर्ततु जे ज्ञान, ते केवल आत्मा द्वारा ज उत्पन्न थतु हुवाथी प्रत्यक्ष तरीके ओळखाय छे। पहले कौन सी था वो, उसके निमित्त पनाने पामेला, उसके द्वारा होने वाला ज्ञान लिया, और यहाँ ये सभी परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना आत्म स्वभाव को कारणभूत ग्रहिणी, यानी आत्म स्वभाव क्या है जानना, उसका स्वभाव ये, बस उसी के द्वारा उसने जाना है, यानी आत्मा के द्वारा ही जाना हुआ, वो सब प्रत्यक्ष होगा। अहीं आ गाथा मां सहज सुखना साधनभूत एवं आज
यहाँ जो इसमें कहा ना सर्व द्रव्य पर्याय एक ही वक्त व्याप्ति में प्रवर्तित केवल ज्ञान हो गया।
हाँ प्रत्यक्ष है क्योंकि वो आत्म स्वभाव के द्वारा जाना, तो आत्म स्वभाव के द्वारा अकेला आत्मा को जाना ऐसा नहीं है, सभी पदार्थों को भी आत्मा के द्वारा जाना है, वहाँ कोई इंद्रियों के द्वारा सभी पदार्थों को नहीं जाना है, आत्मा के द्वारा ही स्वपर का जानना हुआ है। तो यहाँ तो पूरा जो सर्व प्रत्यक्ष है ऐसा उसको केवल ज्ञान की बात की। तो कहते अहीं आ गाथा मां सहज सुखना साधनभूत एवं आज महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छवामां आयुं छे। ये महाप्रत्यक्ष ज्ञान है ना, केवल ज्ञान उपादेय मानवामां आयुं छे। एम आशय समझो, इच्छा करना है ना, इच्छा करने से थोड़ा ही हुआ, वो उपादेय मानना यानी वही प्राप्त करने योग्य उसको मानना। अब जैसे आचार्य की भी टीका पढ़ लेते, 5 मिनट है अभी ना, इसका कुछ भावार्थ नहीं है ना, नहीं भावार्थ नहीं है, नहीं तो आगे होगा इसलिए पढ़ लिया, देख लिया। जैसे आचार्य की टीका पेज नंबर 76 पर है। अथ पुनरपि प्रकारांतरेण, प्रकारांतरेण चाहिए, प्रकारांतरेण नहीं प्रकारांतरेण, र का रा करो। प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षणम कथयति, ये अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण कहते हैं। प्रकारांतरेण यहाँ लिखा था, प्रकारांतरेण वो प्रकारांतरेण अन्य प्रकार से। जम परदो विन्नानं तंतु परोक्षं तिभणिदं यत् परतः सकाशात् विज्ञानं परिज्ञानं भवति। परतः ने परसे, से लगाए ना, पर के द्वारा ज्ञान होता है, तत् पुनः परोक्षमिति उसको परोक्ष ऐसा कहने में आता है। केषु विषयेषु, तो किस विषय के बारे में बात कर रही है परोक्ष की बात, तो कहते 28 ने गेय पदार्थों में जो परसे होता है उसको परोक्ष कहा। यदि केवले न नादम हवदी, हाँ क्या अन्य अर्थेशु, अठ ने अर्थ यानी गेय पदार्थेश, बणिदम अठेसु। देखो क्या कहते हैं, यदि केवलेन नादम हवदी ही, यदि केवलेन असहायेन ज्ञातम भवती ही स्फुटम। क्या कहते हैं, केवल यानी ओनली मात्र उससे होगा, यानी असहाय, असहाय ने कोई निमित्त बिना वाला, उससे अगर होता तो केन कर्तृभूतेन, कौन करने वाला है वो जानने वाला, तो कहते जीवेन, जीव के द्वारा, तरही तो पच्छक्खम प्रत्यक्षम भवती थी, तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, यानी मात्र पर के सहाय के बिना केवल जीव के द्वारा ही होता है तो उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। अतो विस्तर, अभी उसका विस्तार बताते हैं, एक मिनट है, जरा मैं 58 नंबर की बात था, जम परदो विन्नान, तो विस्तर है। ये प्रकारांतर है ना, बरोबर है, और विस्तर, विस्तर ही चाहिए, विस्तार नहीं चाहिए, विस्तर बरोबर है। पढ़ते हैं, इंद्रिय मन परोपदेश आलोकादि बहिरंग निमित्त भूतात् तथैव च। क्या कहते हैं, अभी किस किस का निमित्त है, इंद्रिय मन परोपदेश यानी उपदेश, आलोक यानी प्रकाश आदि, बहिरंग निमित्त भूतात, ये बहिरंग निमित्तों से, तथैव उसी प्रकार ज्ञानावरणीय क्षोभम जनित, ज्ञानावरण के क्षोभम जनित उसका भी निमित्त है ना वहाँ पर, ये भी निमित्त में ही जाता है, वो तो नियम रूप निमित्त वहाँ होगा, ये तो बहिरंग में डाला। तो ज्ञानावरणीय क्षोभम जनित, वो जनित और उसमें डैश नहीं चाहिए, एक शब्द है, अर्थ ग्रहण शक्ति रूपा या उपलब्धे रूपा या उपलब्धे है, अर्थावधारण रूप संस्काराच्च, क्या कहते हैं, ज्ञानावरणी के क्षोभम से जनित अर्थ ग्रहण शक्ति यानी पदार्थों को जानने की शक्ति रूप, ये विस्तार से लेना पड़ेगा, कल ले लेंगे इसको अत विस्तर। वही तो होगा, हाँ ये नीचे के चार लाइन कल ले लेंगे, फास्ट फास्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कल यानी परसों 19 तारीख। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तक सदा देख गिरीश।
नमो यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयजनम, नमो वज्जानम, नमो लोहे सुपसावनम, नमो यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयजनम, नमो वज्जानम, नमो लोहे सुपसावनम।